वृंदावन की महिमा का गान करेंगे अभी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदिनी रे राजहंस खेल करे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालिंदिनी रे राजहंस खेल करे ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधाना नायिका। हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्नासन बसिया छें दुए जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्य रत्नासन बसिया छें दुए जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पोड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषण। रूप लावण्य राशि अमिया पड़ छे खासी हास्य परिहास संभाषण। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोरा माने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोरा माने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कि बद्रीनाथ में बहुत ठंडी है, हाँ तो अब मानसिक और शारीरिक तैयारी कीजिए। ऐसे गोलोक चंद्र प्रभु ने इंटरनेट पे देखा कि वहां पर दोपहर में 3 डिग्री है तापमान और रात को -6 तो आप सब कपड़े लाए हैं ना, गरम कपड़े लाए हैं, हाँ तो जिन्होंने गरम कपड़े नहीं लाए हैं पर्याप्त, कृपया यहाँ भी खरीद सकते हैं और बद्रीनाथ पहुँचने पर शायद 3-4 बजे तक हम पहुँच जाएं, आशा करते हैं। वहाँ भी दुकानें हैं तो अच्छे गरम कपड़े वहाँ भी मिल जाते हैं, तो यदि आपके पास पर्याप्त गरम कपड़े नहीं हैं तो बहुत कष्ट होगा, तो इसलिए तैयारी अवश्य करके आए सब लोग। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के ऊपरी लोकों से यहाँ पृथ्वी लोक पर आने की सुंदर कथा है और कथा शुरू होती है महाराज सगर से। वैसे उनका नाम सगर इसलिए हुआ कि जब वो बच्चे थे, जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो उनकी जो विमाताएं थीं, अर्थात उनकी माता नहीं परंतु उनके पिता के जो अन्य रानियां थीं, उनको बहुत द्वेष हो गया था कि हमारा कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं और इस रानी को बच्चा हो गया है, इसलिए राजा का ध्यान केवल इन पर जा रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे से विष पिलाना शुरू कर दिया बच्चे को, जबकि कोई नहीं देख रहा था। परंतु ऐसे होता है कि बचपन से थोड़ा थोड़ा विष पिलाते रहने से व्यक्ति विष को सहन कर सकता है। ऐसे हजार साल पहले भी चंद्रगुप्त आदि ने ऐसे ही सब तरकीबें की थी, विषकन्या आदि, जो बचपन से उनको थोड़ा थोड़ा विष पिलाया जाता था। तो खैर, ऐसे थोड़ा थोड़ा विष तो पिलाते गए वो, परंतु बच्चा जीवित ही रहा, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। विष सहित, गर मतलब विष, स मतलब साथ में, तो सगर मतलब विष सहित। और सगर शब्द का किस शब्द से संबंध लगता है आपको? सागर। तो सगर के कारण फिर जो सागर हुई, खुदाई हुई, क्यों अभी आगे सुनते हैं। उनके दो रानियों में सगर महाराज की भी आगे चल के रानियां हुई और वैसे काफी समय से संतान नहीं हुए थे तो उनको वरदान मिला था कि आप में से एक की रानी जो है उनको एक पुत्र होगा और दूसरी रानी है उसको 60,000 पुत्र होंगे। तो रानियों को चयन करना पड़ा, तो एक ने कहा मुझे एक पुत्र काफी है, दूसरी ने कहा ठीक है मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो गईं। एक रानी को 60,000 पुत्र हुए और दूसरे रानी को एक लड़का हुआ जिसका नाम था असमंजस। अब ये 60,000 पुत्र तो राजकुमार थे ही, परंतु ये असमंजस जो है ये बहुत दुष्ट व्यक्ति निकला। ये प्रजा को बहुत हैरान करता था, तरह तरह के अन्याय प्रजा के प्रति। और बात यहाँ तक पहुँची कि राजा सगर को, असमंजस को बहिष्कृत करना पड़ा, राज्य से बाहर निकाल दिया। वास्तविक राजा ऐसे होते हैं जो पक्षपात नहीं करते हैं, और अपने प्रजा के रक्षा के लिए, भलाई के लिए अपने पुत्र को भी राज्य से बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं या उनको दंड देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा पुत्र है इसलिए मुझे किसी न किसी प्रकार से उसको दंड से बचाना चाहिए, हालांकि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो सगर महाराज ऐसे नहीं थे, असमंजस को बाहर भेज दिया। असमंजस का एक पुत्र था, इनका नाम था अंशुमान। ये अंशुमान असमंजस राजा की तरह बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बिल्कुल उल्टे थे। ये बहुत ही पुण्यवान, बहुत धार्मिक, बहुत सज्जन। तो एक बार हुआ ये कि सगर महाराज एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना चाहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए होता ये है कि राजा अपनी सेना को भेजता है और सेना के साथ में एक घोड़ा होता है, अश्व, और जहाँ भी घोड़ा जाता है उसके पीछे पीछे सेना जाती है। और जिस प्रांत में या जिस राज्य में वो घोड़ा चले जाता है तो या तो उस प्रांत का राजा घोड़े भेजने वाले राज्य के अधीन हो जाए और स्वीकार करे कि आपका घोड़ा मेरे राज्य में आ सकता है, मैं भी आपके अधीन हूँ, आप राजाधिराज हैं, मैं तो एक साधारण राजा हूँ। तो फिर वो कोई कर आदि देता था राजा को, अश्वमेध यज्ञ के लिए आगे और सुविधा हो जाती थी। और यदि कोई राजा कहता कि नहीं, मैं आपके घोड़े को यहाँ आने नहीं दूंगा, तो वो घोड़े को गिरफ्तार कर देता था। दूसरे शब्दों में सेना के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। तो कोई साधारण राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, बहुत ही शक्तिशाली हो तब ये कर सकते थे। तो खैर, ऐसे अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया और ये 60,000 पुत्र जो हैं महाराज सगर के, ये घोड़े के पीछे पीछे गए। अनेक राजाओं ने महाराज सगर को अपना महाराज स्वीकार कर लिया और आगे चलते चलते वो गंगा सागर में आए, आज जिस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, बंगाल में है, समुद्र के तट पर। तो वहां पे कपिल मुनि का आश्रम था, तो वो वहां अपने ध्यान में मग्न थे। जब वो वहां घोड़ा आया तो घोड़ा कहीं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था। तो उन्होंने आकर देखा कि घोड़ा अभी कपिल मुनि के आश्रम में है। तो उन्होंने सोचा कि ये कपिल मुनि ने ही घोड़े को गिरफ्तार किया है। तो वो इतने जानकार नहीं थे ये राजकुमार, तो उन्होंने सोचा कि इस मुनि, ये मुनि ही गुनहगार हैं, तो इनको दंड देना चाहिए। तो आक्रमणात्मक भाव से जब वो बढ़ रहे थे कपिल मुनि के ऊपर, ये तो बड़ा अपराध था कपिल देव के प्रति, ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो उन्होंने अपने आंखें खोली और वो सारे के सारे 60,000 राजकुमार भस्म होके गिर पड़े। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कपिल देव को ऐसे आवश्यकता नहीं थी कि आंख खोल के उनको आग से भस्म करे, वो अपने ही अपराध के कारण ही भस्म हो गए। कपिल देव के प्रति इतना बड़ा अपराध जब उन्होंने किया तो वो अपराध ही एक अग्नि जैसे बन गया जिसके कारण उनका शरीर भस्म हो गया। तब इतने सारे राजकुमार 60,000 उनके शरीर का राख जब यहां पड़ा हुआ है भस्म होकर, और काफी समय से वो लौटे नहीं, तो महाराज सगर चिंतित हो गए कब ये लोग कहाँ गए हैं, क्या समस्या हुई, कहीं कोई युद्ध हो चुका है क्या, कहीं वो हार गए क्या। तो उन्होंने अपने पोते, दूसरे रानी का जो पुत्र था असमंजस, उसका पुत्र अंशुमान को भेजा कि अंशुमान तुम जाओ और जरा ढूंढो कि तुम्हारे चाचा लोग कहाँ पे हैं, 60,000 चाचा। तो अंशुमान इधर उधर सारे पृथ्वी में ढूंढते ढूंढते अंततः कपिल देव के आश्रम में आए और वहां देखा कि ढेर सारा राख वहां पे पड़ा है। फिर उनको तुरंत समझ में आया कि क्या घटा होगा, क्या घटना हुई होगी। तो बुद्धिमान थे अंशुमान, तो उन्होंने सोचा कि मेरे चाचा ने अवश्य कपिल देव के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया होगा, बहुत अपमानित किया होगा उनको, इसलिए ये परिणाम हुआ है कि उनके शरीर ऐसे भस्म हो गए हैं। और 60,000 शरीर के राख, कल्पना कीजिए कितना, कितने बड़े स्थान में हुआ होगा। तो कपिल देव के सामने आए और उनको बहुत नम्रता से प्रणाम किया, मधुर वचनों में उनकी स्तुति की और उनके चाचाओं की ओर से क्षमा याचना की। कपिल देव अंशुमान के भाव को देखकर प्रसन्न हुए, ये तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की तरह तो नहीं थे जो उद्धव के समान थे, आके कैसे व्यवहार करना नहीं जानते थे एक मुनि के साथ, ये भी तो, और ये भी तो कपिल देव हैं, कोई साधारण मुनि भी नहीं है। परंतु अंशुमान के व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो अंशुमान ने याचना करने पर कपिल देव ने उनको बताया कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार करने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि जो हो चुका मैं उसे वापस नहीं कर सकता। अंशुमान जानना चाहते थे कि इनके चाचाओं का उद्धार कैसे हो, अब इनकी गति क्या होगी। तो कपिल देव ने कहा कि एक ही उपाय है कि गंगा का जल यदि स्वर्ग से आए और ये जल यदि इन अस्थियों को, इनके शरीर के राख को, भस्म को यदि स्पर्श करे तो फिर उनका उद्धार हो सकता है। तो भगीरथ सोचने लगे कि अब स्वर्गलोक से गंगा जी को कैसे लाना चाहिए, यहाँ इतना कठिन कार्य है ये। तो खैर, गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्या की परंतु गंगा जी सामने नहीं आई। गंगा जी को स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी लोक लाने में वो असफल हुए। तो अंशुमान की आयु खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। सारे जीवन भर वो प्रयत्न कर रहे थे गंगा जी को यहाँ लाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। उनके पुत्र थे जो भी अंशुमान महाराज की तरह बहुत धर्मपरायण थे, बहुत सज्जन थे, तपस्वी थे, एक आदर्श राजा थे वो भी। तो उनका नाम था दिलीप। तो महाराज दिलीप ने भी कई वर्षों तक तपस्या की, बल्कि महाराज दिलीप का भी सारा जीवन जो है गंगा जी को यहाँ पृथ्वी लोक पर लाने के प्रयास में बीत गया। परंतु महाराज दिलीप भी सफल नहीं हो पाए। तो देखिए उन समय, और वहाँ की उस समय की आयु भी छोटी नहीं हुआ करती थी, 50-100 साल की नहीं थी, बहुत लंबी आयु के हुआ करते थे उस समय। और ऐसे सारी आयु उनकी बीत गई, अंशुमान महाराज की और महाराज दिलीप की, दोनों के। अब महाराज दिलीप के पुत्र थे जिनका नाम था भगीरथ। भगीरथ महाराज भी अपने पिता और अपने दादा के समान ही थे, वो भी धर्मपरायण थे, बहुत सज्जन थे, सभ्य थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अवश्य गंगा जी को लाना ही चाहिए, जिस कार्य में मेरे पिता और मेरे दादा असफल हुए थे, ये न के न प्रकार न मुझे तो करना ही चाहिए, नहीं तो मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे सारे पूर्वज जो है वो सब असंतुष्ट रहेंगे, ये तो मेरा धार्मिक कर्तव्य है। बल्कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया कि किसी न किसी तरह से मुझे गंगा जी को यहाँ लाना है। तो बहुत तपस्या करने के बाद फिर गंगा देवी प्रकट हुई उनके सामने। तो उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप पृथ्वी पर आ जाइए और पृथ्वी पर आके आप बहते हुए मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। क्योंकि उनके लिए कोई अंतिम क्रिया भी अभी नहीं हो सकती है, और उपाय एक ही है इस अपराध से मुक्त होने के लिए, और वो है आपका दिव्य जल। तो गंगा देवी के मन में काफी संकोच था। गंगा देवी तो ऊपर के लोकों में तो बह रही थी, मंदाकिनी के नाम से विख्यात थी, और सारे ऊपरी लोकों के जो निवासी हैं उनका लाभ तो लेते थे, परंतु पृथ्वी लोक में आना, इसके बारे में गंगा देवी को बहुत संकोच था। क्योंकि वो जानती थी कि पृथ्वी लोक के ऊपर पापी लोग बहुत होते हैं, और वो केवल अपने पाप को धोने के लिए गंगा में आके स्नान करेंगे और फिर जाके पाप करेंगे और फिर आके स्नान करेंगे, तो ये बोझ उनके लिए बहुत भारी हो जाना था। यदि केवल एक बार आके स्नान करके वापस व्यक्ति चले जाए और पुनः पाप न करे, जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को करना चाहिए कि स्नान करके फिर बाद में बाहर आकर पाप नहीं करना चाहिए, यदि ऐसे होता तो शायद गंगा जी को इतना संकोच न होता। परंतु जब बार बार पाप करके बार बार स्नान करने लोग आएंगे, केवल गंगा जी के लिए को एक पाप धोने के लिए एक साधन बनाने से, गंगा जी ने भगीरथ महाराज से कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी इतने लाखों लाखों लोगों के पाप, और वो भी इतने सालों तक वो चलता रहेगा। और दूसरी मेरी समस्या ये है कि मेरे जल का प्रवाह स्वर्ग लोक से यहाँ पृथ्वी लोक पे आते आते इतना तीव्र हो जाएगा कि कोई सहन नहीं कर पाएगा, बल्कि मैं पृथ्वी लोक पे आते आते सीधे मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी, क्योंकि प्रवाह इतना होगा कोई रोक नहीं पाएगा इसको। तो जब तक इन दो समस्याओं के तुम हल नहीं निकालते महाराज भगीरथ, तब तक मैं नीचे पृथ्वी लोक पर नहीं आऊंगी। तो भगीरथ महाराज ने तुरंत उत्तर दिया कि हे देवी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जहां तक आपके पहले समस्या का प्रश्न है, मैं आपको ये सांत्वना देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि इस धरती के ऊपर पापी लोग तो हैं अवश्य, परंतु ऐसे भी आत्म साक्षात्कारी भगवत भक्त हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, और जब वो आपके जल में आके स्नान करेंगे तो जो भी पाप पापी लोग आपके जल में डाल के गए हैं वो उन पापों को धो डालेंगे। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि पाप का बोझ बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त भी बहुत हैं पृथ्वी लोक के ऊपर। साधु लोग आपके जल में आके बार बार स्नान करेंगे, ऐसे कई भक्त होंगे और साधु होंगे जो आपके तट पे ही निवास करेंगे और प्रतिदिन स्नान करेंगे आपके जल में, इसलिए आप सुरक्षित हैं देवी, आप चिंता नहीं करना। और जहां तक आपके दूसरे संशय का या प्रश्न का समस्या का प्रश्न है, तो केवल शिवजी हैं जो आपके धारा को बह पाएंगे, सहन कर पाएंगे, तो इसलिए मैं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मैं तपस्या करूंगा। तो अब महाराज भगीरथ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अभी तपस्या में लगे। तो ऐसे फिर काफी समय बीत गया। वैसे भी शिवजी का नाम है आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आशु मतलब जल्दी और तोष मतलब संतुष्ट होना। तो फिर भी थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो ऐसे काफी समय महाराज भगीरथ के जीवन का भी निकल चुका था। अब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। अंततः शिवजी प्रकट हुए भगीरथ महाराज के तपस्या से प्रसन्न होकर, और कहने लगे कि हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए मुझसे। तो भगीरथ महाराज ने कहा कि गंगा देवी प्रकट होने वाली है स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के ऊपर, परंतु उनके जल का प्रवाह इतना तीव्र होने के कारण केवल आप ही हैं जो इस प्रवाह को रोक पाएंगे, अन्यथा गंगा देवी तो सीधे पाताल लोक चली जाएंगी और पृथ्वी लोक के निवासियों को कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए गंगा देवी हिचकिचा रही हैं, तो कृपया आप धारण कीजिए गंगा देवी को। तो शिव जी तैयार हो गए। श्री शिव जी ने कहा तथास्तु। फिर पुनः गंगा देवी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ महाराज ने तपस्या की। इस बार गंगा जी तैयार हुई और जैसे ही बहते हुए स्वर्गलोक से नीचे आई, उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। ये हमें याद रखना चाहिए कि गंगा जी का जल दिव्य होने के कारण वो किसी भौतिक प्राकृतिक नियम के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे आजकल वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में यदि हम कोई जहाज आदि भेजते हैं तो उसकी कक्षा जो अलग से हो जाएगी, गोल गोल घूमेगा सूर्य के, जो भी है आजकल तरह तरह के विचार होते हैं। परंतु गंगा देवी आदि ऐसे दिव्य होने के कारण वो सब इन चीजों के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण आदि के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। वो अपने रास्ते बना लेते हैं अंतरिक्ष में। तो गंगा जी भी आई और शिव जी कैलाश पर बैठे थे, ध्यान में अपनी जटाओं को बांध के बैठे थे। वैसे भागवत में वर्णन है कि शिव जी ने गंगा जी के धारों को पकड़ लिया और वहां पर गंगा जी रहीं, और फिर उनके जटाओं से फिर गंगा जी बाहर निकली और हिमालय में फिर गंगोत्री में आकर बहने लगी। वैसे वाल्मीकि रामायण में और छोटी सी एक बात बताई गई है कि गंगा देवी क्योंकि एक नदी है, तो नदी चंचल हो, तरह तरह से इधर उधर घूमती रहती है। जो जल है वो तो एक जगह तो नहीं रहता, प्रवाह होता है तेज। तो गंगा देवी सोच रही थी, अच्छा अब शिव जी है, अब वो मुझे रोकेंगे, ठीक है मैं इतने तेज प्रवाह से चलूंगी कि शिव जी को भी साथ ले जाऊंगी। तो शिव जी ने सोचा, अच्छा गंगा देवी ऐसे सोच रही है, तो ठीक है, अपनी जटा बांध लिए, अच्छी तरह से बैठे। और जब गंगा देवी आई तो इस तरह से गंगा के जल को पकड़ लिया कि एक बूंद भी बाहर नहीं आया। और गंगा जी जो है शिव जी के जटाओं में जोर से पूरी ताकत से घूम रही थी, गोल 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 निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शिव जी के जटाएं उनको बाहर आने के लिए नहीं छोड़ रहे थे, एक बूंद भी बाहर नहीं आया। वैसे शिव जी जब बैठते हैं तो उनका जो शरीर का आकार है वो, या शरीर की लंबाई वगैरह है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे एक संस्था के भक्त थे, अभी वो नहीं रहे, उनका नाम है सदापुत्र प्रभु, बहुत बड़े वैज्ञानिक आदि भी थे, वो बहुत अच्छे भक्त भी थे। तो उन्होंने एक जगह एक लेख लिखा था कि उन्होंने कुछ संशोधन किया और जगह जगह से उन्होंने कोई जानकारी निकाली कि शिवजी के शरीर कितना लंबा है। वो कहते हैं कि जब शिवजी ध्यान में बैठते हैं तो कमर से लेकर उनके सर तक जो ऊंचाई है वो यूरोप जो है ना, यूरोप से दक्षिण से दक्षिण भाग से लेकर जो उत्तर भाग में जितना अंतर है उतना है। अब जो भूगोल अच्छी तरह से जानते हैं वो शायद बता पाएंगे कि कितने मील होंगे, कई हजार मील तो होंगे। तो शिव जी की ऊंचाई कमर से लेकर सर तक कई हजार मील है और हम रहे 5-6 फुट के लोग। तो ऐसे हैं शिव जी, तो इसीलिए शिव जी को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। तो शिव जी की जटाएं, कभी हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि गंगा जी का प्रवाह इतना तीव्र है, खास करके ऋषिकेश हरिद्वार में देखेंगे इतनी चौड़ाई और इतने प्रवाह से चले, कैसे एक व्यक्ति ने जटाओं में ऐसे धारण कर लिया होगा। परंतु है शिव जी ऐसे अद्भुत कार्य वाले, सर्व सिद्धि निषेवित, सारे सिद्धियां उनके अंदर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही विशेष गुण शिव जी में है जो जीवों में नहीं है। सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतन शिव जी के और ऐसे गुण हैं, नित्य नूतन, वो ऐसे कभी बूढ़े नहीं दिखते। जैसे कि श्री कृष्ण का चित्र आपने बुढ़ापे में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि श्री कृष्ण कभी बूढ़े होते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपने शिव जी की तस्वीर या चित्र भी बुढ़ापे में नहीं देखी होगी। किसी ने देखा है शिव जी के सफेद बाल? शिव जी कभी छड़ी लेकर चल रहे हैं, कभी देखा है? तो शिव जी सदैव तरुण अवस्था में ही रहते हैं, साथ साथ में सर्वज्ञ। शिव जी सर्वज्ञ हैं पूरी तरह से, साथ साथ में सांद्रानंद, उनकी वो पूर्णे पूरे सच्चिदानंद सांद्रांग है। उनका शरीर सच्चिदानंद है, प्राय पूर्णतया नहीं लेकिन प्राय सच्चिदानंद है। तो शिव जी भी कोई साधारण नहीं है, ऐसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त है और वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे हम बद्ध जीव हैं, हमारा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, परंतु उस स्वरूप को हमेशा बनाए नहीं रख पाते हैं, इसलिए तो हम बद्ध अवस्था में हैं अभी। परंतु शिव जी के साथ ऐसे नहीं होता, सदा स्वरूप संप्राप्त है, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। और जब भी मोहिनी अवतार जैसे के साथ जैसे शिव जी का हुआ कि वो भ्रमित हो गए, तो हमें जानना चाहिए कि ये साधारण माया का खेल नहीं है। अंततः माया देवी कौन है? माया देवी तो शिव जी की पत्नी है, शिव जी तो माया देवी की के स्वामी हैं। तो माया देवी सदैव अपने स्वामी के अधीन रहती हैं। एक पतिव्रता स्त्री हैं माया देवी, दुर्गा देवी, इसलिए वो शिव जी को कैसे के वश में कैसे ला सकती हैं? तो शिव जी उनके प्रभाव में नहीं आते। तो जब ऐसे हो भी जाता है जैसे कि मोहिनी मूर्ति के साथ में हुआ, जबकि ऐसे बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि शिव जी भ्रमित हो गए, ये हमें जानना चाहिए कि ये माया का खेल नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण की योजना से हुआ। तो सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, सर्वज्ञ नित्य नूतन सर्वविद्धि सर्वसिद्धि निषेवित सच्चिदानंद सांद्रांग। तो उनका शरीर सच्चिदानंद पूर्ण है और संपूर्ण सिद्धियों से वो युक्त रहते हैं। ये पांच विशेष गुण शिव जी के अंदर होते हैं जो जीवों में भी नहीं होते हैं। अंशेन गिरीशादिशु, परंतु ये पांच जो गुण हैं वो शत प्रतिशत शिव जी में नहीं होते, वो केवल कृष्ण में होते हैं। 50 गुण जो जीवों के होते हैं वो तो शिव जी के अंदर रहते हैं, जीवों में जिस मात्रा में होते हैं उनसे कहीं अधिक मात्रा में शिव जी में रहते हैं। और शिव जी के पास जो पांच अधिक गुण हैं वो अन्य जीवों में नहीं रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण में ये 55 गुण पूर्णतया रहते हैं, संपूर्ण अवस्था में रहते हैं। तो आगे चल के और 5 गुण भगवान नारायण में हैं जो शिव जी में भी नहीं है, और फिर और 4 गुण भगवान श्री कृष्ण में हैं जो कि नारायण में भी नहीं है, और जो गुण भगवान नारायण में हैं 60 गुण वो परिपूर्णतया श्री कृष्ण में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें शिव जी कौन है ये समझने का प्रयास करना चाहिए। शिव जी जीव नहीं है और नहीं वो पूरी तरह से भगवान है, वो बीच में है परंतु प्राय भगवान की स्थिति में है, प्राय पूरी तरह से नहीं, प्राय 80% भगवान परंतु पूरी तरह से नहीं है। तो शिव जी के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो गंगा देवी के प्रवाह को धारण कर ले। जब शिव जी एक सारे विश्व के समुद्र को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, उसे एक पहले बूंद बनाकर अपने हथेली में, फिर उसका पान करके अपने कंठ में रख सकते हैं, जिसके द्वारा उनका नाम हुआ नीलकंठ। और आज भी शिव जी के कंठ में वो विष है, वो धारण किए हुए हैं, नीचे जाने नहीं दे रहे हैं उसे, सारे जगत के कल्याण के लिए। क्योंकि शिव जी ऐसे नहीं करते तो सारे जगत में बहुत तहस नहस हो चुका होता। तो शिव जी ने फिर ऐसे धारण कर लिया, और जब गंगा जी का मान थोड़ा कम हो गया तो फिर शिव जी ने सोचा ठीक है अब मैं छोड़ देता हूं। तो थोड़ा सा जल शिव जी की जटाओं से फिर निकल पड़ा। तो शिव जी के चित्र जब आप देखते हैं तो गंगा जी को भी आप देखते हैं कि गंगा जी की धारा उनके जटाओं से बह रही है, इसलिए शिव जी का नाम हुआ गंगाधर, जो गंगा देवी को धारण करते हैं अपनी जटाओं में। फिर ये वैसे भगीरथ महाराज को फिर से निवेदन करना पड़ा, हे प्रभु इतने कष्ट से गंगा जी को यहाँ लाए, अभी आप बांध के रखे अब क्या होगा, तो कृपया आप ऐसे अब उनको छोड़ दीजिए ताकि हमारे उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो जाए। तो शिव जी ने भगीरथ महाराज के ऊपर भी कृपा कर दी, तो गंगा जी को छोड़ दिया। और गंगा जी बहते हुए गंगोत्री से आई, फिर बहते हुए चली नीचे पर्वत से, और भगीरथ महाराज अपने रथ के ऊपर सवार होकर चलते 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 आगे जा रहे थे। और जैसे जैसे जहां जहां वो जा रहे थे वो तो सीधे गंगा सागर के पास जा रहे थे, और पीछे पीछे गंगा देवी बहती बहती आ रही थी। और ऐसे बताया जाता है कि मायापुर के पास एक गांव है जिसको चकदाहा कहते हैं। एक दो साल पहले हमारा सौभाग्य था कि हम वहां जा पाए थे चकदाहा, वैसे उसका नाम है चक्रदह, परंतु अपभ्रंश होकर चकदाहा हो गया। वहां पे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, वही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति जो पहले जगन्नाथपुरी में थी। चैतन्य महाप्रभु के बहुत शुद्ध भक्त थे जो नवद्वीप में रहा करते थे, जिनका नाम था जगदीश पंडित। तो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जब वो गए तो जब उनको वापस आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने बुलवाया, जब वापस आना पड़ा नवद्वीप तो उनको बहुत संकोच हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था, विरह हो रही थी कि मैं कैसे जगन्नाथ को छोड़ के जाऊं। तो जगन्नाथ ने उनसे कहा कि नहीं आप जाओ, लेकिन मैं आपको साथ में ले जाना चाहता हूं। तो जगन्नाथ ने कहा ठीक है, लेकिन आपको कैसे ले जाऊं। कहा ठीक है, एक छड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, उसके अंत में मुझे बांध दो और उठा के ले जाओ। तो जगदीश पंडित ने कहा कि हे प्रभु आपका जो वजन है कितना भारी है, मैं कैसे ऐसे छड़ी के ऊपर उसको लेकर चले जाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। आप में से जिन भक्तों ने रथ यात्रा का उत्सव देखा होगा जगन्नाथपुरी में, आप जानते हैं कि कितने हट्टे कट्टे दैत जो पहलवान लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो भी पसीना छूट जाता है उनका, कितने सारे लोग लगते हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति को उठा के ले आने के लिए, बीच बीच में तकी आदि रखते हैं कि क्योंकि सारा जो अंतर है वो एक इकट्ठे नहीं कर सकते, बीच बीच में रोक के ले जाते हैं। तो ये एक ब्राह्मण कैसे ले जाते बेचारे। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, तो मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा। तो वैसे ही भगवान हो गए हल्के। उन्होंने कहा परंतु एक ही शर्त है, जहां पे तुम मुझे नीचे रखोगे वहां से मैं हिलूंगा नहीं। तो फिर चलते चलते वो चक्रदह स्थान में आए, और वहां उन्होंने उनको अचानक ऐसे तीव्र इच्छा हो गई प्रकृति के बुलाव को उत्तर देने के लिए, तो और कोई उपाय नहीं रहा, उन्होंने वहां पे रख दिए मूर्ति को। फिर स्नान आदि सब करके आ गए तो जगन्नाथ भगवान वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर वो समझ गए कि हाँ भगवान की इच्छा है कि वो यहीं पर रहे, नवद्वीप नहीं जाए। तो वहां फिर उनकी सेवा करते रहे, वहाँ मंदिर बना और आज वो मंदिर गौड़ीय मठ का है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहाँ पे एक गौड़ीय मठ मंदिर आदि बनाया था, वहाँ पूजा अर्चा सेवा चल रही है। तो चक्रदह, चकदह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भगीरथ महाराज जब वहाँ गंगा देवी को लेकर आ रहे थे, उनकी चक्र जो है रथ का वो वहाँ अटक गया, इसलिए फिर ये चक्रदह नाम पड़ गया। तो गंगा जी के यहाँ आगमन के साथ इस स्थान का भी संबंध है। तो खैर बहते बहते फिर जल वहाँ भगीरथ महाराज के पूर्वजों के जो अस्थि आदि थे वहाँ तक पहुँचा जल, और जैसे ही जल ने स्पर्श किया उन अस्थियों का तो उनका उद्धार हो गया। 60,000 के 60,000 जो राजकुमार थे उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई और अब वो समुद्र में बह गई। आगे चल के फिर गंगा देवी वहां से पाताल लोक में चली गई। तो अब भगीरथ महाराज की इच्छा पूर्ण हो गई, और क्योंकि भगीरथ महाराज के द्वारा गंगा देवी यहाँ पृथ्वी लोक पर आई थी, इसलिए उनका गंगा देवी का नाम हुआ भागीरथी। और ये छोटी सी लीला हम पहले भी सुना चुके हैं कि जब गंगा देवी बहती हुई जा रही थी तो जहनू ऋषि के आश्रम में गई, वहाँ बाढ़ हो गया, जहनू ऋषि को गुस्सा आया, एक क्षण में उन्होंने निगल लिया गंगा जी का सारे का सारा जल, जैसे शिव जी में धारण करके रखा था जटाओं में, जहनू ऋषि ने अपने शरीर में धारण कर लिया। और फिर भगीरथ महाराज ने फिर से निवेदन किया कि मुनिवर अब ये क्या हो गया, अभी थोड़ा ही समय बचा है, अब इतने 3 जन्म बीत गए, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे भी। तो फिर करुणा की भावना से जहनू ऋषि ने छोड़ दिया अपने कानों से। फिर गंगा जी पुनः आगे बहती गई गंगा सागर की ओर, इसलिए गंगा देवी का दूसरा नाम है जाह्नवी। जाह्नवा जो है वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, लेकिन हमारे वैष्णव भजन में जब भी जाह्नवा आता है तो हमारे भक्त गलती से जाह्नवी कह देते हैं। कभी कभी ऐसे गलत भी हमारे पुस्तक में होता है, श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, ये भजन हम कल गा रहे थे। तो कृष्णदास कहते हैं मैं जाह्नवा देवी जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी है उनका स्मरण करते हुए नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। तो ये जाह्नवा देवी और जाह्नवी ये दोनों अलग अलग हैं। तो खैर फिर आगे चल के गंगा जी जहाँ समुद्र को मिलती हैं तो उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, जहाँ की हर मकर संक्रांति के समय बहुत बड़ा उत्सव होता है, लाखों लाखों लोग आते हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि केवल राख से अस्थियों से स्पर्श करके गंगा जी के जल का प्रभाव ये होता है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि वो लोग धार्मिक थे भी नहीं ऐसे, और कितने 3 पीढ़ियां बीत गई थीं। यदि किसी के अस्थि के साथ ऐसे हो सकता है तो यदि कोई भक्ति भावना से गंगा देवी के चरणों में प्रार्थना करे, उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे तो कितना लाभ मिल सकता है उनको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनकी भक्ति नहीं थी, केवल 3 पीढ़ी बाद उनके अस्थियों का स्पर्श करने मात्र से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई, तो श्रद्धालु भक्तों की बात के बारे में क्या कहना। तो गंगा जी यहाँ पृथ्वी लोक पर आई, परंतु गंगा देवी को आदेश दिया हुआ था, गंगा देवी की सेवा थी, पाताल लोक में भी जाना है, तो फिर आगे चल के वो पाताल लोक में भी गई, निम्न श्रेणी के लोकों में, जहाँ की उनका नाम भोगवती है। इस तरह से त्रिपथगामिनी गंगा देवी ऊपरी लोकों से लेकर निम्न श्रेणी के लोकों तक जाती है। शुरुआत कहाँ होती है, नहीं, ब्रह्मांड के अंदर आवरण में से आके कहाँ जाती है गंगा जी भी, आज दोपहर को हम चर्चा कर रहे थे ना, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक से होके सप्तर्षि लोक से लेकर चंद्रलोक से फिर ब्रह्मलोक, और ऐसे बहते बहते फिर वो यहाँ आ जाती है, और फिर यहाँ से फिर पाताल लोक की ओर भी जाती है। इसका मतलब है कि गंगा जी का पथ संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी का पथ का प्रयोग करके जो ऊपर के लोगों के ऋषि मुनि हैं, खास करके जो महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक में रहते हैं, वो यहाँ पृथ्वी लोक तक भी आ सकते हैं, पाताल लोक में भी जा सकते हैं। कैसे? केवल गंगा जी में रह के। तो गंगा जी का पथ जो चलते आ रहा है, गंगा जी भी बह रही हैं, अभी भी बह रही हैं स्वर्ग लोक से इधर। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर उनका पथ वहां कट गया है, नहीं। तो वो गंगा जी के जल के साथ साथ बहते हुए आते हैं पृथ्वी लोक पर, शीघ्र पहुंच सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। एक अन्य जगह प्रभुपाद जी प्रवचन में बताया करते थे कि वो ऐसे इनके पिताजी एक ऐसे योगी को जानते थे जो हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाते थे और पहुंचते थे कलकत्ता। केवल योगी थे वो, तो गंगा जी का आश्रय लेकर बहुत जल्दी कम समय में, प्राय थोड़े क्षणों में या मिनटों की बात है, ये दिनों की बात नहीं है, केवल गंगा जी का आश्रय लेके वो सीधे हरिद्वार से कलकत्ता रोज जाते, फिर वापस भी आते। रोज की बात उनके लिए थी, आना जाना हो सकता था। तो ये तो पृथ्वी लोक के गंगा की बात है, तो फिर ऊपरी लोकों से नीचे आने वाले गंगा के लिए क्यों नहीं हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऊपर के लोगों के ऋषि मुनि आया करते हैं, जाया भी करते हैं गंगा जी के पथ को स्वीकार करके, आकाश गंगा। तो ऐसे गंगा जी सब जगह हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं, गंगा जी के द्वारा उनकी कृपा वो सबके ओर पहुंचा रहे हैं। तो गंगा मैया के प्रति हमने वास्तव में बहुत ही आभारी होना चाहिए, और भगीरथ महाराज को भी कि उनके द्वारा अभी यहाँ गंगा जी धरातल पर आ चुकी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भगीरथ महाराज की कथा ये पिछले युगों में हुई, अवश्य कलयुग में भी नहीं, ये सब प्राचीन युगों की बात है, सत्य आदि की बात है, और किसी पिछले मनमंत्र की बात है, क्योंकि तब तक पृथ्वी में गंगा देवी अपने प्रकट रूप में नहीं थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं पृथ्वी की दशा गंगा देवी के बिना। ठीक है, तो फिर हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं, और 5-10 मिनट के बाद प्रसाद का समय हो रहा है, फिर प्रसाद लेके हमें कल जल्दी बद्रीनाथ के लिए रवाना होना है। और जो भक्त प्रवचन के पहले शुरुआत में नहीं आए थे, मैंने एक सूचना की थी, वो याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण आपके पास पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े होने चाहिए। यदि नहीं है तो कोई व्यवस्था यहीं पे करनी चाहिए, या तो कल दोपहर में बद्रीनाथ पहुँच के वो कर सकते हैं, पर तो वहाँ 3 डिग्री होगा दोपहर में भी, इसलिए इसकी कृपया अच्छी तरह से तैयारी करिए ताकि आप बद्रीनाथ यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna, 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 Hare. राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Itai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, and Itai Gaura Hari Bol. Itai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, and Itai Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande, Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Ganga Maya Ki Jai, Shri Badrinath Dham Ki Jai, Shri Mahaprasadam Ki Jai, Gaur Premanande, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna.